नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव प्रस्तुति में। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय से हो रहा है। इस कार्यक्रम का नाम है संपूर्ण योग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, समर सोल्स्टिस है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य के सबसे लंबे समय तक के होने का दिन है, यानी आज का दिन सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में मनाया जाता है। आज के ही इस दिवस को हम वर्ल्ड म्यूजिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबको इन तीनों विशेष दिनों की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत का जो तोहफा है पूरे विश्व के लिए योग के रूप में, उसे सेलिब्रेट करता है। हजारों लाखों लोगों ने योग के बेनिफिट्स अपने जीवन में अपनाए हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि लाखों की संख्या में विदेशी नागरिक भी भारत आकर योग सीखकर योग प्रशिक्षक के ट्रेनिंग्स को लेकर गए हैं। आखिर भारत के इस योग में ऐसी क्या खास बात रही है, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन करता है। और आज इसी चिंतन की धारा को संपूर्ण स्वास्थ्य को सेलिब्रेट करने का दिन है। योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य देता है, अपितु मानसिक स्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य और साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति का भी एक टूल है। आज पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, तो हम यही आशा करते हैं कि योग आपके जीवन में भी संपूर्ण स्वास्थ्य दे, मन की शांति दे और आध्यात्मिक उन्नति दे। तो इन मंगल कामनाओं के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो 21 दिवसीय योग चैलेंज दिया गया था, उसका आखिरी दिन है। तो आइए इस चैलेंज को कंप्लीट करते हैं और आज कार्यक्रम की शुरुआत में करते हैं थोड़ा सा योगासन, फिर हासिल करते हैं अष्टांग योग में जो मुनि पतंजलि ने कहा है उसके योग सूत्र में आखिरी सूत्र को आज समझेंगे और फिर करेंगे थोड़ा सा ध्यान यानी राजयोग मेडिटेशन। पूरे कार्यक्रम को 35-40 मिनट के बीच में समाप्त करने की कोशिश की जाएगी। शुरुआत में चलिए करते हैं योगासन हमारे योगाचार्य हरीश वैद्य जी के साथ जो जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से।
ओम शांति वंदे मातर। आप पर भगवान शिव की सतत दुआएं बरसती रहे, यही मंगल कामना करता हूं। जिन लोगों को टॉन्सिल है, किसिंग टॉन्सिल है, जिन लोगों को थायराइड है, जिनको गलगंड है, जिनको कंठ के बारे में कोई प्रॉब्लम है, फिर जिनकी जो धोरी नसें हैं किसी कारण से वहां ब्लॉकेज है, जिनकी एकाग्रता कम है, जिनका आवाज बिल्कुल बिगड़ गया है, उन लोगों के बारे में एक आज प्राणायाम सिखा रहा हूं। उज्जयी प्राणायाम करने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्राणायाम बहुत बेहतरीन है। मैं दोनों पद्धति से आपको सिखा दूंगा। आप अगर इसको करने में सफल हुए तो निश्चित रूप से आपकी आवाज और कंठ की सारी बीमारियां आपकी मिट सकती है, ये बिल्कुल बात पक्का है। चलो इसके लिए एक सिंपल उपाय बता देता हूं। या तो आप उस प्रकार से श्वास पर श्वास करें तो भी ये उज्जयी प्राणायाम है। जैसे मैंने अभी सांस ली, ये उज्जयी प्राणायाम नहीं है, लेकिन उज्जयी प्राणायाम का रास्ता अलग है। बहुत ध्यान से सुनिए इस फर्क को। आप आपको रास्ता मालूम पड़ा, आंखें भारी भारी हो जाएगी, हल्के सी चक्कर आएंगी, भीतर में ठंडापने की अनुभूति होगी। हो रही है नहीं? आंखें बंद, आंखें इतनी भारी हो जाएगी, आप करिए। दोनों के रास्ते अलग अलग है। मुझे तो देखो, मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूं, बहुत इच्छा हो गई आपको कि आप अनुभव निश्चित करेंगे कि थोड़े सी ही सांसों की आपने गति बदली, रिदम बदला, फटाक से रिजल्ट शुरू। उज्जय का रास्ता अलग है, ये ध्यान रखें। आप पूरा आ करें, मुंह खोले और गहरी श्वास प्रश्वास करें, कम से कम 5-6 सांसें लें, आ करें ये करते वक्त मास्क हटा देना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फिर से गहरी सांस ले, अभी उसी सांसों को लेते हुए मुंह को हल्के रूप से बंद कर दे। वो रास्ता याद रखना। अब एक बार फिर से याद रखो, नींद में यही गति चलती है, यही रिदम चलता है, और इसलिए साइलेंट नींद आती है आपको। भीतर में पर्याप्त मात्रा में एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। दिन में अगर आपने जानबूझकर भी ये 5 मिनट या 10 मिनट के लिए कर लिया, तो आपके शरीर में बहुत सारी शांति का आगमन हो सकता है, अनुभूति हो सकती है। याद आया ना? फिर से एक बार मुंह खोलिए और आप करते रहे। यदि ये करते करते किसी को चक्कर भी आ जाते हैं तो आप सीधे सो जाना, लेट जाना। ये हो सकता है आपका बीपी थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन आपके मध्य मस्तिष्क में बहुत सारी नवीनतम की अनुभूतियां होगी, चमक आ जाएगी। पूरे मध्य मस्तिष्क में आपके चमक आ जाएगी, ऑक्सीजन का आविर्भाव होगा, विचार कम हो जाएंगे, आपकी सोच कम हो जाएंगी, एकाग्र बढ़ जाएगी, आत्मानुभूति होना शुरू हो जाएगा। ये इतना पावरफुल प्राणायाम है उज्जयी। इससे थायराइड ग्रंथि एक्टिव हो जाती है, उसका जो हॉर्मोन्स है वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, आंखें पावरफुल हो जाती है, मस्तिष्क चमकने लगता है, और जिनको समझो टॉन्सिलाइटिस है, अंदर स्वेलिंग है, किसिंग टॉन्सिल है, उसको वो थोड़ा भार रूप से करेंगे। जैसे आपको सुअर की आवाज मालूम होंगे ना, सुअर जो आवाज निकालता है वैसी आवाज निकालेंगे आप, ये दोनों भाग पर इतना प्रेशर आएगा आपको, आवाज निकाल के देखिए आप। इसी यहां पर प्रेशर पॉइंट क्रिएट होगा और जो टॉन्सिल है बड़े बड़े उसका कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। लेकिन पहली शर्त यह है कि आप पानी नहीं पी, माना ठंडा पानी नहीं पियेंगे, फ्रीज का पानी नहीं पियेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर वाला ही पानी पियेंगे। इससे बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। ये उज्जय प्राणायाम सीधा ही आध्यात्मिकता से आपको जोड़ देगा, सीधा ही परमात्मा से आपको जोड़ देगा, आत्मानुभूति करा देगा, परमात्मानुभूति करा देगा, अगर आपने सही रूप से इसको किया तो। क्योंकि सारा डेरा उसका यही है, यहीं पर उसके एहसास की अनुभूति हो जाती है, पूरा इलाका शांत हो जाता है। ये इस विषय का पूरा श्रेय मैं भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूं, और जगत जननी भारत माता को प्रणाम करके, आपको भी वंदन करके, आज के विषय का समापन करता हूं। अस्तु, वंदे मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद हरीश वैद्य जी का, और जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से आज उज्जयी प्राणायाम सिखाया। दोस्तों, हर दिन हम एक या दो योगासन सीखते आए हैं और पिछले कई दिनों से हम प्राणायाम सीख रहे हैं, और आज आखिरी दिन था। तो आखिरी दिन में हमने 21 दिवसीय योगा चैलेंज में हर दिन कुछ न कुछ नया सीखा है, योग के फिजिकल एस्पेक्ट्स को सीखा है। अब आज के बोध की तरफ आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने जो योग के अष्ट अंग बताए हैं, उनमें से आखिरी अंग आता है, द एट्थ लिंब ऑफ योगा, वो है समाधि। हम सब ध्यान धारणा के बाद अब समाधि पर आए हैं। इस विषय पर आज विशेष हमारे को बोध देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज के वरिष्ठ राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से। आइए दीदी जी के पास चलते हैं और हासिल करते हैं आज का बोध। नमस्कार दीदी, स्वागत है आपका।
नमस्कार, ओम शांति।
पहले तो दीदी आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
आपको भी हो बहुत बहुत शुभकामनाएं।
जी दीदी, हमारे साथ बहुत सारे साथी सोशल मीडिया पर लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल्स पर यह प्रोग्राम लाइव जा रहा है, और पिछले 20 दिनों में लोग लगातार मिलकर फिजिकल योगासन भी सीख रहे थे, मगर पतंजलि ने जो अष्टांग योग में बताए हैं कि सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ध्यान इत्यादि विषयों पर बहुत अच्छे से राजयोग के प्रकाश में जो ज्ञान मिलता है उसका बोध लोगों ने हासिल किया है। आज आपके पास जब हम आए हैं तो आज आखिरी दिन है और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो पतंजलि के सूत्रों में आखिरी सूत्र जो है समाधि, इसे आखिर में रखा गया है, तो जरूर इसकी कोई खास बात होगी। इस विषय पर हम आपसे बोध हासिल करना चाहते हैं, तो अगले 10-15 मिनट के लिए आप हमारे सभी दोस्तों से मुखातिब हो, आज के विषय पर हमें आप आज का बोध प्रदान करें।
ओम शांति। आज का दिवस जैसे आप बार बार सुन रहे हैं, 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। पूरे विश्व भर में योग की विभिन्न प्रकार के प्रैक्टिसेस, विभिन्न प्रकार के योग का अभ्यास चल रहा है। मैं ऐसा समझती हूँ कि आज पतंजलि के योग के 8वें नंबर का 8वां अंग है समाधि, और मुझे समाधि का ही कार्य दिया गया। बहुत सुंदर लगता है मुझे ये समाधि, सुंदर लगता है, लेकिन इसके काफी बिगड़े हुए रूप देखकर भी ऐसा लगता है कि इसको समझने के लिए बहुत गहनता चाहिए। एक स्थान पर मैं गई, वहां मैंने देखा कि एक बहन, एक नहीं दो तीन इधर उधर बैठे हुए थे, सिर ढका हुआ था, थोड़ा मुंह भी ढका हुआ था, और वो बैठे हुए थे ऐसे, उनके चेहरे पर ना तो कोई खुशी थी ना कोई गमी थी, लेकिन बहुत जैसे सुन पड़ने का चेहरा था। तो मैंने किसी एक बहन से पूछा कि ये ऐसे क्यों बैठे हैं, तो कहा कि इनकी समाधि लग गई है। अब स्पष्ट हो रहा है कि ये समाधि तो लगी हुई है, क्योंकि उनको आने जाने वाले का किसका ध्यान नहीं था, लेकिन जो समाधि में मनुष्य चाहता है जीवन के ऐसे अनुभव करना, जो अनुभव उसके जीवन को एक नई दिशा दे सके, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। हो सकता है ये समाधि की अवस्था से उठने के बाद, तब भी मैंने एक का अनुभव पूछा कि आप जो समाधिस्थ स्थिति में बैठे थे तो आप क्या अनुभव कर रहे हैं, का ये अनुभव बड़ा अलग प्रकार का है, ये शब्दों से वर्णन करने योग्य नहीं, इसके लिए मेरे पास शब्द भी नहीं जो मैं आपको अपना अनुभव शब्दों में वर्णन करके सुना सकूं। मैंने कहा फिर भी कुछ तो अनुभव हुआ होगा। कहा मैं इस समय इस शरीर से इस दुनिया से बिल्कुल अलग हट चुकी और मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी उस समाधि अवस्था में बैठी। ये शब्द सुनकर मुझे ईश्वर द्वारा सिखाए गए राजयोग की बात याद आई। शिव बाबा हम बच्चों को क्या सुनाते कि बच्चे योग ज्ञान का मनन चिंतन भी है, ईश्वर से रूह रिहान भी है और एक ऐसी बीज रूप अवस्था है जिसमें परमात्मा जिसमें सब गुण और सब शक्तियां और ज्ञान समाया हुआ है। इन सब चीजों का गहन अनुभव करना जो योगाभ्यासी है वो ईश्वर के इन सब गुणों ज्ञान का अनुभव है। तो ये एक योग की बड़ी फाइनल स्टेज है। इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए या अनुभव करने के लिए हम सब बहुत इच्छुक रहते हैं और ये अवस्था कोई चलते फिरते अनुभव नहीं होती। इस अवस्था का अनुभव करने के लिए बहुत लंबे काल का अभ्यास चाहिए और केवल अभ्यास ही नहीं चाहिए, बहुत सी दिनचर्या में बड़ी शांति चाहिए, स्वभाव में बड़ा धैर्यवत चाहिए, बोल में बहुत सुशील बना चाहिए, बहुत चीजों की आवश्यकता है, इनका इससे कनेक्शन। तो मैंने देखा कि योग वास्तव में बहुत संस्थाएं बनी हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से योग सिखाते हैं। कई तो आसन और प्राणायाम को योग समझते हैं, यही योग है और यही आजकल प्रसिद्ध हो चुका है। और भारतवासी जो भारत के योग सीखे हुए हैं वो विश्व के अन्य देशों में भी जाकर के यही योग सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको परमात्मा द्वारा सिखाया गया योग बताना चाहती हूँ। ये मैं सबसे पहले यही बात कहना चाहती हूँ कि वास्तव में देखा जाए तो सत्य योग की पहचान सिवाय सत्य परमात्मा के कोई मानव मात्र उस सत्य योग को करा ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य की पहचान सत्य के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और योग का अर्थ है जोड़, योग का अर्थ है मिलना, योग का अर्थ है यूनियन। जब यूनियन कहो, कनेक्शन कहो, मिलना कहो, जुड़ना कहो, तो ये दो का इसमें होना पाया गया। पहला है रचना और दूसरी है रचना। अब रचना की पहचान रचना द्वारा ही प्राप्त हो सकती है और रचना ही रचना की सही पहचान दे सकती है। तो जब रचता रचना की पहचान देते हैं तो उसकी पहचान में उसे सबसे पहले ये बताते हैं कि ये चोला जिसे नाशवान चोला कहते हैं, तो शाश्वत शक्ति है, इस नाशवान चोले के अंदर तू आत्मा है, ये शरीर तू नहीं है। शरीर तेरा कर्म इंद्रियां कर्म करने का साधन है, लेकिन तू कर्म इंद्रियों से न्यारी चेतन शक्ति आत्मा। आत्मा का अपना दिव्य स्वरूप, बहुत दिव्य स्वरूप है, चेतन है, दिव्य प्रकाश है, दिव्य ज्योति है, चमकता हुआ ज्योति स्वरूप तो आत्मा है। और तेरा अपना मूल स्वरूप बहुत शांत, बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र है, आनंदमय है, शक्तिमय है, प्रेममय है, ज्ञानमय, तो साधारण नहीं है आत्मा। तो बहुत सत्य की संतान, तेरा सत्य स्वरूप अनश्वर स्वरूप स्वरूप है और तो शांत शुद्ध और पवित्र आत्मा। ना केवल उन्होंने रचना हम आत्माओं की पहचान दी, लेकिन अपने भी पहचान दी कि मैं भी तेरे जैसा ही ज्योति स्वरूप हूँ, दिव्य बिंदु रूप हूँ, लेकिन मैं जन्म और पुनर्जन्म से न्यारा, इसलिए तू आत्मा कहलाता है तो मैं परम आत्मा कहलाता, मैं परम आत्मा जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा, सर्व शक्तियों का सर्व गुणों का ज्ञान का सागर, मैं शांति का सागर, मैं प्रेम का सागर हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान तेरा पिता हूँ और हे आत्मा तो मेरा पुत्र है। अगर सत्य से तुझे जुड़ना है तो तुझे अपने सत्य स्वरूप में टिकना होगा। जब तक तेरे अंदर देह की कॉन्शियस है तब तक तो समाधिस्थ स्थिति में स्थित नहीं हो सकता, तब तक तो मेरे से रू ध्यान कर सकता है, बातचीत कर सकता है, थोड़े समय के लिए अपनी महिमा और मेरे गुणों की महिमा कर सकता है, लेकिन तो मेरे स्वरूप में समा जा और मेरे स्वरूप का तो अनुभव करने लग जा। वो तभी होगा जब मैं सत्य स्वरूप हूँ और तेरा भी स्वरूप सत्य, तो इस सत्य स्वरूप में ऐसा स्थित हो जा कि तुझे उस समय देह, ये देह की पुरानी दुनिया, ये देह के संबंध और देह के पदार्थ सब भूल जाए, केवल मात्र तेरे सामने तेरा नश्वर, जो अनश्वर स्वरूप तेरा चमकता हुआ दिव्य ज्योति है, वही जरूर ज्योति स्वरूप रूप में तू स्थित हो जाए। जब तू इस रूप में स्थित होता है तब मेरी याद आती है, मैं भी तेरे समान अनश्वर अविनाशी अजन्मा तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाला सब शक्तियों का पुंज सागर मैं तेरा पिता। जब तू आत्मा अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है, मुझ परमात्मा का ध्यान करता है, तो मेरी सर्व शक्तियां जैसे कि तुझ आत्मा को मेरे द्वारा प्राप्त हो रही है, उस समय तेरे अंदर कुछ भेद नहीं रहता कि मैं आत्मा हूं आप परमात्मा हो। ईश्वर के गुणों में आत्मा इस कदर समा जाती है, ऐसा लगता है कैसा सेकंड भी इस स्वरूप से हम भिन्न ना हो जाए। बहुत आनंद, बहुत खुशी, बहुत प्राप्ति की उपलब्धि। मैं ऐसा कहूंगी कि पतंजलि के अष्टांगों में ये आठवां अंग वास्तव में बहुत ही आवश्यक अंग है, ये योग की फाइनल स्टेज। पतंजलि जी ने ये नहीं बताया कि योग में जब मन को टिकाना है तो किस पर टिकाओ, मैंने कहा किसी भी पदार्थ किसी भी इष्ट पर मन टिका सकते, किसी पर नहीं। वो सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता जब हमको अपनी पहचान देता है कि मैं दिव्य ज्योति हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं तीनों कालों को जानने वाला तीनों लोकों को जानने वाला हूँ, मैं तुम सर्व आत्माओं का परम पिता हूँ और मेरी सर्व शक्तियां मेरे बच्चे तुम्हारा अधिकार है, तुम केवल मेरे सम्मुख अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, मैं तुझ आत्मा हूँ अनश्वर आत्मा हूँ, अपने सर्व शक्तियों के वरदानों से परिपूरित कर दू। तो आत्मा मेरे वरदानों से मास्टर वरदाता का स्वरूप एहसान होकर चारों तरफ ये शक्तियां विश्व में वाइब्रेशंस के रूप में जा रही है और सर्व को सुखद अनुभूति करा रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम
शांति। बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आपने बहुत ही सुंदर आज के विषय पर हमें बोध दिया कि वास्तविकता में समाधि का अर्थ क्या होता है और परमात्मा से कैसे हम योग के संबंध को जोड़कर एक ऐसी अवस्था में, एक बीज की अवस्था में हम पहुंच जाएं जहां पर हमें कुछ और आभास ही ना हो, और ऐसी अवस्था के ऊपर योग के इस आठवें लिंब पर यानी अष्ट अंग में, ये आखिरी अंग इसीलिए बताया गया है कि योग से यही प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति गिनी जाती है, और परमात्मा ने जो योग सिखाया है उस योग से सभी अपने जीवन को, जीवन में इन सुंदर अनुभवों को कर सकते हैं। दोस्तों अब वक्त है प्रश्नोत्तर का। दीदी जी हमारे साथ हैं, तो अगले 5-7 मिनट के लिए अगर आप कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के लिख सकते हैं और इन प्रश्नों को मैं दीदी जी के समक्ष रखूंगा और दीदी जी से उनके अनुभव युक्त बोलों से हम उनके विजडम से हमारे प्रश्नों के लिए उत्तर और समाधान। नाम है इनका नित्या और ये एक प्रश्न पूछते हैं और वो कहते हैं कि मुझे हर समय सबसे डर लगा रहता है। इस समय में, ऐसे समय में जब हम ऐसा डर की स्थिति महसूस करते हैं, अपने आप को हल्का कैसे रखें, डर से कैसे निजात पाएं, ये प्रश्न पूछते हैं नित्या।
कि डर लगता है, सबसे बड़ा डर है कहीं मर न जाए, कोई मार न दे। वास्तव में देखा जाए तो जब तक हम स्वयं को देह समझते हैं, देह नश्वर है, सदा इसके विनाश होने का भय बना रहता है। लेकिन आपको ये ख्याल होना चाहिए कि नाशवान चोला मैं नहीं हूं, ये तो केवल मात्र मेरी कर्म इंद्रियां हैं, एक्सप्रेस करने के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए ये इंद्रियों का मैंने आधार लिया है। मैं तो चेतन अविनाशी शक्ति हूँ, जिसे न शस्त्र काट सकता है, न हवा उड़ा सकती है, न अग्नि जला सकती है। ऐसा मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। बार बार याद रखिए, ये आपका वास्तविक स्वरूप है। कौन कहता है कि आपको कोई मार भी सकता है? आपको भय कहाँ से आया? भय तो मरने का होता है, इज्जत लुट जाने का होता है, कोई बुरा अंदेशा आने का होता है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, अविनाशी स्वरूप मेरा है, मेरे स्वरूप का कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको ये राय देना चाहूंगी कि बार बार इस बात को याद रखना, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं अविनाशी चमकता हुआ चैतन्य सितारा हूँ। मैं शरीर का मालिक हूँ, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा, मैं अजर अमर अविनाशी। बार बार अपने स्वरूप को स्मृति में लाओ। जितना आपको अपना स्वरूप स्मृति में आएगा, उतना आपका जो भय है वो धीरे धीरे मिटता चला जाएगा और एक दिन भय रहित जीवन आपका हो जाएगा, सदा सुखी जीवन हो जाएगा। ऐसी मेरी आपसे बहुत बहुत मंगल कामना
जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। एक और प्रश्न है हमारे एक साथी पूछते हैं कि देह का भान न रहने का अभ्यास कैसे करें, क्योंकि हमने ये चीज सीखा है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है और अपने आप को आत्मा समझने का अभ्यास करना है, बट देह का भान नहीं रहे कि मैं शरीर नहीं हूं, इसका अभ्यास कैसे किया जा सकता है कि ये शरीर को हम भूलें?
नहीं, शरीर तो शरीर है और मेरा ही है, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। लेकिन जिस समय शरीर को शरीर समझने की जरूरत है, कोई कार्य है शरीर से, तो आप समझिए ये शरीर है, इसके द्वारा मुझे ये काम करना है। जब आपको शरीर से कोई काम ही नहीं है और आप अपने स्वमान और अपने स्वरूप में स्थित हो जाइए कि मैं तो एक चैतन्य सितारा, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, तो शरीर की उस समय भूलने या ना भूलने की बात ही नहीं है, हुई ही नहीं शरीर ना। अब मान लीजिए मैं इस समय कोई हीरो पार्ट कर रही हूँ, अब हीरो पार्ट के समय तो मुझे अपने को वही हीरो समझ कर ही पार्ट अदा करना पड़ेगा, और जब मैं पार्ट से अलग हट गई तब तो जो मैं हूँ, जैसी मैं हूँ, वही तो मैं समझूंगी। तो याद रखना है कि मैं ये देह नहीं हूँ। वास्तव में देह जब समझने की जरूरत है, आंखों से कुछ देखना है तो नेचुरली आप आंखों रूपी इंस्ट्रूमेंट को यूज करोगे, मुख को यूज करोगे बोलने लिए, कानों को यूज करोगे सुनने लिए, आप मन को यूज करोगे कुछ बात को सोचने के लिए। आप यूजर हो, आप मालिक हो इन इंद्रियों के, तो मालिक बन के काम कीजिए, कभी गुलाम ना बन जाइए। हर समय देह में रहते याद रखो, ये देह मेरी है, मैं देह नहीं हूँ, मेरे ऊपर मेरा अधिकार है। जिस अधिकार से आप अपना कोई भी कार्य करना चाहें, तो अधिकारी बनकर के कार्य कीजिए, तो ये आपका देह में रहते हुए देही अवस्था का अभ्यास कहलाएगा। ये अभ्यास हमेशा ही होना चाहिए। हमको तो बाबा कहते हैं मस्तक में चमकती हुई मणि है, तेरी सब मुरादें पूरी करेंगी। तो कभी नहीं भूल जाइए कि मैं तो चमकता हुआ एक दिव्य प्रकाश अविनाशी सितारा अजर अमर हूँ, मेरा कभी नाश नहीं हो सकता है। मेरा ये शरीर है, ये कर्म इंद्रियां हैं, इनके द्वारा मुझे काम लेना है, लेकिन मैं शरीर नहीं। ये अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, इससे अलग होने की तो बात ही नहीं। चाकू पकड़ा है मैंने, मुझे कुछ काटना है तो चाकू का यूज करूंगी। चाकू पकड़ा हुआ है तो मुझे मालूम है ना मैंने पकड़ा हुआ है, और जब चाकू का काम नहीं मैंने रख दिया है, अब मैं अपने अस्तित्व में हूँ कि जो मैं हूँ, ये तो नहीं मुझे चाकू की स्मृति बनी रहेगी कि मैंने पकड़ा था, जब जरूरत थी मैंने पकड़ा था, जब जरूरत नहीं तब मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो स्वरूप में फिर आ जाओ। ये अभ्यास कीजिए। सत्यता तो सत्यता ही है ना, हम सत्यता में असत्यता को ले आते हैं, तो असत्य स्वरूप जब हमारा मिक्स होता है तो प्रश्न उठता है कि देह से अपने को अलग कैसे समझे। हम है ही अलग, कौन कहते हम अलग नहीं, हम है ही अलग। कभी भी अपने आप को ये नहीं समझो कि मैं देह हूँ, देह मेरी है, मैं देह नहीं। ठीक है
जी। एक और प्रश्न है दीदी, सीता शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं और सीता जी प्रश्न पूछते हैं कि मैं सबसे मिलने से कतराती हूँ, मैं चाहती तो हूँ कि मैं सभी से मिलजुल कर रहूं, बट जब भी ऐसा करना चाहूं तो कतराती हूँ, ऐसा ये प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे में कैसे अपने इस फीलिंग को ओवरकम किया जा सके।
सीता शाह जी, आपको नाम तो आपका बड़ा सर्वोच्च है और आपके नाम की तो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, दुनिया जाके दर्शन करती हैं, और सीता तो दर्शन कराती, किसी को दर्शन हो जाए सीता माँ के, कहते हैं बस मेरा तो जीवन तर गया, आज तो मैंने सीता माँ के दर्शन कर लिए। आप ऐसी सीता माँ, और आप किसी से मिलने से कतराए, कभी नहीं कतराना। जब भी किसी से मिलना हो सोचना मैं राम की वो सीता हूँ, सर्वशक्तिवान की वो सजनी हूँ जिसे सीता भी कहकर पुकारा गया है। मैं सबसे मिलती नहीं लेकिन मैं अपने राम का दिग्दर्शन कराने जा रही हूँ। मैं किस राम की सजनी हूँ, किस राम की सीता। ऐसे चल के अपने अस्तित्व को याद रखो, अपने मोटो को याद रखो, अपने महत्व को याद रखो। मैं कौन हूँ, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं असाधारण हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, ऐसा समझ करके आप जाइए। नहीं तो इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाता है, वो बड़े हैं, मैं कभी उनसे मिली नहीं, वो बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े अमीर हैं, पता नहीं वो मेरे से कैसे मिलेंगे। अरे कैसे मिलेंगे, मैं कौन हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। वो मुझे पहचाने तो अच्छा है, ना पहचाने तो उनकी मर्जी है, लेकिन मैं तो दाता की संतान हूँ, मैं साधारण थोड़ी हूँ। वो बड़े प्यार से आशीर्वाद की मुद्रा में अंदर ही अंदर जैसे आशीर्वाद देते हुए जाइए, मिलिए, प्यार से बैठिए और अपने अस्तित्व को पहचानिए। मैं साधारण नहीं, मैं असाधारण, मैं दाता की संतान हूँ और दाता ने मुझे अपनी सर्वशक्तियों का खजाना दिया हुआ है। मैं जाऊंगी तो मेरी सर्वशक्तियों के दाता की सर्वशक्तियां इन आत्माओं को सुखद अनुभूतियां कराएंगी। ऐसा समझ कर आप जाइए, हर एक से मिलिए, ना मिलने वालों को भी प्यार से देख लीजिए, मन ही मन मिल लीजिए, मिलिए जरूर। कभी भी अपने आप को इन्फीरियरिटी में ना लाइए, आप बड़ी महान हो, बड़े श्रेष्ठ हो। आपसे मिलने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं और आप मिलना नहीं चाहते, आपसे मिलने आए और आप ना मिलो, ऐसा नहीं। शाहजी ख्याल रखना, शाहजी बन के रहना, ऐसे महान हो, मैं साधारण नहीं। ठीक है
जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी हमारे दोस्तों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और खास आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब के साथ लाइव जुड़ने के लिए, और हम सबको आज बहुत ही सुंदर विचारों पर हमारे सबके जो प्रश्न थे, जो शंकाएं थी उसे दूर करने के साथ साथ योग का ये जो आखिरी सूत्र था समाधि, इसके ऊपर एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही गहरा अर्थ हमें दिया है। अक्सर करके लोग घबरा जाते हैं, समाधि मतलब ये सभी के बस की बात नहीं, मगर आपने इतना सहज करके समझाया कि हम सब के जीवन का उद्देश्य ये होना चाहिए और परमात्मा ये चीज सिखाते हैं और इस चीज को अगर हम जीवन में धारण करें तो ये सब कुछ संभव है। तो आज का ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इसकी दोबारा आपको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आप यहाँ जुड़े हमारे साथ, हमारे सभी दोस्तों की तरफ से जो प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं उन सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
ओम शांति। ओम शांति।
दोस्तों ये थे राजयोगिनी चक्रधारी दीदी जी, जो दिल्ली से सीधे जुड़े थे इस कार्यक्रम में और उन्होंने आज के विषय समाधि पर हम सबको बोध दिया। पतंजलि ने जब समाधि को योग के आठवें अंग के रूप में रखा तो उसके पीछे कुछ वजह रही होगी। बहुत सारे लोग समाधि कहते ही समझते हैं कि ये तो सन्यासियों के लिए है या फिर ये तो समाज आने वाली बात है और हम घर गृहस्थ में रहते हुए दैनंदिन कार्य को करते हुए समाधि की अवस्था में नहीं जा सकते, ऐसा बहुत सारे लोगों में भ्रांतियां हैं। मगर ये सत्य नहीं है, इस बात को हमने आज समझा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस 21 दिवसीय योग चैलेंज में हमने समझा कि योग सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है, योग हमारे जीवन का और हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। और इसीलिए भारत में योग शास्त्र के रूप में गीता को देखा जाता है, पतंजलि जो योग के अष्ट अंग बताते हैं उसमें भी गीता की ही बात बार बार उभर कर बाहर आती है। पतंजलि योग सूत्र में ये चीज बताते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग से मन की जो वृत्ति है, मन का जो भटकना है यहां वहां, वो रुक जाता है, एक स्थिरता आती है। और समाधि इसी स्थिरता का प्रतीक है कि जब आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां आपको लगे कि आप समाये हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि आप ईश्वर के प्रेम में, उनके गुणों में अपने आप को समाया हुआ महसूस करेंगे। आशा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हम सब कुछ कर रहे हैं, फिजिकल योगा भी कर रहे हैं, आसन प्राणायाम कर रहे हैं, बट साथ साथ योग के जो एट लिम्ब्स हैं उन सबको भी हम समझें और उसे जीवन में धारण करें और उसके बेनिफिट्स को अपने लाइफ में देखें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी शुभकामनाएं एक दूसरे को लिख सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप इंटरनेशनल डे की शुभकामनाएं लिखें, एक दूसरे को गुड विशेस लिखें, ताकि हम सब मिलकर योग डे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सभी को पता रहे। अब इस कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में हम करेंगे राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन से हम सब जानते हैं अनेकों बेनिफिट्स हम सभी को मिलते हैं, मेंटल हेल्थ अच्छा होता है, हम सब जीवन में ज्यादा सेटिस्फेक्शन अनुभव करते हैं। तो राजयोग ध्यान एक बहुत ही सिंपल सी विधि है जिससे हम अपने मन को फिर से स्थिरता में ला सकते हैं, फिर से परमात्मा की तरफ जोड़ सकते हैं। तो कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में चलिए करते हैं गाइडेड मेडिटेशन और अनुभव करते हैं परमात्मा की शक्तियों का, उनके ब्लेसिंग्स का, उनके पावर्स का। और ये मेडिटेशन कराने के लिए ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय के शांतिवन परिसर से राजयोगिनी धर्मिष्ठा दीदी जी जुड़ रहे हैं। चलिए करते हैं उनके साथ मेडिटेशन यानी राजयोग ध्यान।
ओम शांति। आज के इस वैश्विक पर्व विश्व योग दिवस के आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिन भर में हमने अनेक योग विद्याओं के बारे में जाना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से योग क्या है? योग है मिलन आत्मा और परमात्मा का। यह मिलन तभी संभव हो सकता है जब हम आत्मा के ऊपर यह चढ़ा हुआ वस्त्र शरीर को भूल करके परमात्मा को याद करें। आत्मा एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर में प्रकृति के मध्य में विराजमान है। यह एक ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा जो इस शरीर को जलाती है। अगर यह ऊर्जा इस शरीर से निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, कोई काम का नहीं रह जाता। आज इस संसार में अनेकों दुख और अशांति है, भय है, पीड़ाएं हैं। इसका कारण यही है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं कि हम आत्मा हैं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। यह एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को जलाती है, विभिन्न इंद्रियों द्वारा कार्य करती है। अगर इस चैतन्य शक्ति को हम परमात्मा से जोड़ते हैं, आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है, तो निश्चित रूप से हम अपने आप को ऊर्जावान बनाकर इस संसार के सभी दुखों से, सभी अशांतियों से, सभी परेशानियों से, हर प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ते हैं, अपने मन से बाह्य सभी प्रकार के संकल्पों को मुक्त करें, अपने मन और बुद्धि को अपने भ्रुकुटी के मध्य में एकाग्र करें, जहां पर हम आत्माएं विराजमान हैं, जहां से हम आत्माएं इस शरीर रूपी मशीनरी का संचालन करती हैं। हम आत्मा एक ज्योति पुंज है, प्रकाश पुंज है। परमात्मा की संतान है जो स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु रूप है, है बिंदु लेकिन परमात्मा हर गुणों में सिंधु है, सर्वशक्तिवान है। उसी प्रकार हम आत्माएं भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, परमात्मा की संतान होने के नाते हम उनकी सर्व शक्तियों के अधिकारी हैं। अगर हम पूरी एकाग्रता के साथ स्वयं को आत्मा निश्चित कर परमात्मा को याद करते हैं, तो हम उनकी सर्व शक्तियों को अपने में अनुभव कर सकते हैं। आप भी अपने मन और बुद्धि से परमात्मा को देखें, जो एक निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, प्रकाश पुंज है, है बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु है। अनुभव करें उस प्रकाश पुंज से शक्तियों की किरणें निकलकर आपकी प्रकृति में विराजमान आत्मा के ऊपर आ रही है। हम आत्मा उन शक्ति रूपी किरणों से स्वयं को शक्तिशाली बना रही है। हर प्रकार के भय से मुक्त हो रही है। हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो रही है। एकदम शांत हो रही है। शांति के सागर परमात्मा से शांति की शक्ति मुझ आत्मा को शांत बना रही है, शक्तिशाली बना रही है। यह ऊर्जा, यह शक्ति मेरे शरीर के हर अंग को पहुंच रही है, जो हर प्रकार से स्वस्थ होते जा रहे हैं। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ। इस शांति की शक्ति को मैं अपने शुद्ध संकल्पों द्वारा पूरे संसार में फैला रही हूँ। संसार में दुखी हर आत्माओं को जो अशांत है, भयभीत है, उन्हें शांति का दान दे रही हूँ। सारे विश्व में सुख है, शांति है, समृद्धि है। यही दृश्य मैं अपने मन और बुद्धि से देख रही हूँ। यह संसार सुखमयी संसार बनता जा रहा है। हर आत्मा खुश है, शक्तिशाली है। परमात्मा से हर आत्माओं को शांति और सुख का वर्षा मिल रहा है, क्योंकि हम सभी आत्माएं इस वर्षे के अधिकारी हैं। परमात्मा के द्वारा प्राप्त इस वर्षे से भरपूर हूँ और सारे संसार को भी परमात्मा द्वारा प्राप्त इस सुख और शांति के वर्षे को प्रदान कर रही हूँ। मेरी यही शुभकामनाएं हैं, यही शुभ भावना है कि सारा संसार सुखमय बन जाए, विश्व की हर आत्मा निर्भय हो, सफल हो, शक्तिशाली हो, क्योंकि परमात्मा हम सब के साथ है। भगवान हमारा साथी है। जहां परमात्मा का साथ हो, वहां कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वहां कोई भी भय को स्थान नहीं है, वहां किसी भी प्रकार के दुख संभव नहीं हो सकते। तो अपने आप को आत्मा निश्चित कर परमात्मा के साथ का निरंतर अनुभव करते रहे और उनसे हर प्रकार से सर्वशक्तियां सर्वगुणों से संपन्न होते रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद धर्मिष्ठा जी का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर राजयोग की अनुभूति कराई। परमात्मा से शक्तियों को लेना या उनकी शक्तियों को अनुभव करना इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम अपने मन की तार को परमात्मा से जोड़ सकते हैं तो फिर उनसे सारी शक्तियां, सारे बल, सारे ब्लेसिंग्स हमें पर आसानी से नेचुरली आते हैं। प्रयास यही होता है कि हम समय निकालकर अपने मन की तार को उस प्रभु से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको पुनः ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। योग शब्द का अर्थ ही होता है टू कनेक्ट, यानी जोड़ना। अगर हम अपने मन की तार को किससे जोड़ते हैं उसके जैसा उनके गुणों को नेचुरली अपने अंदर ले आते हैं। अगर मैं परमात्मा से अपने मन की तार को जोड़ता हूं तो उनके शक्तियों को, उनके सारे गुणों को जब चाहिए तब एक्सेस कर सकता हूं। आशा करते हैं कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी ये प्रयास करेंगे और 31 दिवसीय योगा चैलेंज में जो फिजिकल योगा, प्राणायाम और अष्टांग योग के सारी ही बातों को हमने सीखा है, उन सबको हम जीवन में अपनाएंगे और राजयोग ध्यान यानी मेडिटेशन को हर दिन करेंगे ताकि हमारा मन स्वस्थ रहे और हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करते रहें। तो आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए आपसे लीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति।